हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवत की नौवें स्कंद के चौथे अध्याय से पढ़ रहे हैं, दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। यो माम अतिथिम आयातम आतिथ्येन निमंत्रच अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम्। यो माम अतिथिम आयातम आतिथ्येन निमंत्रच अदत्वा भुक्तवान् तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम्। यो मा अतिथि आयातम आतिथ्येन निमंत्र्य च अदत्वा भुक्तवान् तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम्। माताजी, यो मामतीति मायात आतिथ्येन निमंत्र्य च अदत्वा भुक्तवान् तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम्। यः बोलिए बोलिए। या जो व्यक्ति माम मुझे अतिथिम अतिथि को आयातम आए हुए आतिथ्येन अतिथि के रूप में सत्कार द्वारा निमंत्रय निमंत्रण देकर च भी अदत्वा भोजन दिए बिना भुक्तवान स्वयं खा लिए तस्य उसका सद्यः तुरंत ते तुम्हारा दर्शये दिखाऊंगा फलम परिणाम। महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन के लिए बुलाया, लेकिन मुझे न खिलाकर तुमने स्वयं खा लिया। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान तथाकथित योगी द्वारा पराजित नहीं हो सकते, भक्त तथाकथित योगी द्वारा पराजित नहीं हो सकते। ये दुर्वासा मुनि द्वारा महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करने का प्रयास असफल होने से सिद्ध हो जाएगा, मतलब असफल हो जाएगा। हराव भक्तस्य कतो महत गुणा, भागवत पांचवा स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक। जो भगवत भक्त नहीं है वो कितना ही बड़ा योगी, दार्शनिक या कर्मी क्यों न हो, अच्छा गुणवान अथवा योग्य नहीं माना जाता। केवल भक्त ही सभी परिस्थितियों में विजयी होता है। जैसे दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश की स्पर्धा की ये प्रस्तुत घटना से देखा जा सकता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं तदाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय को हम सब लोग आप लोग पढ़ रहे हो कई दिन से, जिसका संक्षेप में इतिहास ऐसा है कि अम्बरीश महाराज अपना व्रत कर रहे थे जन कल्याण के लिए, और उसमें दुर्वासा मुनि आते हैं, और व्रत जब पारण करने का समय आता है तो दुविधा होती है कि अतिथि आए हैं और कैसे पारण करना है, क्योंकि जन कल्याण भी महत्वपूर्ण है। तो वो साधुओं से और ब्राह्मणों से सलाह करते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपने आचमन कर लिया तो आपका व्रत पारण भी हो गया और नहीं भी हो गया, मेहमान को अन्न खिलाए बिना आप अगर आचमन कर लेते हैं तो आपका व्रत पारण हो जाएगा, जन कल्याण का हेतु भी पूर्ण हो जाएगा। तो साधुओं की सलाह के पश्चात ही अम्बरीश महाराज ये कार्य करते हैं, अपने मन घड़न बात नहीं करते, अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। उनको भी पता है कि ये दुविधा है इस समय, लेकिन वो किसी भी स्थिति में, मन की किसी भी अवस्था में वो दुर्वासा मुनि का अपमान नहीं करना चाहते थे, उसके उल्टे उनका आदर करना चाहते थे, उनका सम्मान को बनाए रखकर ही अपने जन कल्याण का हित भी करना चाहते थे। तो जब ये दुर्वासा मुनि को पता चला तो ये बात करते हैं, हे अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया और भोजन नहीं खिलाया और खुद ही उसको प्राप्त कर लिया, ऐसे बोल रहे हो। उसका परिणाम क्या है कि मैं तुम्हें इसका परिणाम भोगने के लिए मजबूर करूंगा, आप देखो अभी क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं कि एक राक्षस को निर्माण करते हैं, वो जटा को निकाल कर उसका आदेश देते हैं, मारो इसको, वध कर डालो उसका। तो जैसे ही वो राक्षस निर्माण होता है, भगवान का चक्र जो है वो वैकुंठ से आता है इमीडिएटली, और वो राक्षस को खत्म कर देता है, और वो दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है, और दुर्वासा मुनि फिर भागते हैं सब जगह ब्रह्मांड में, सब जगह भागते हैं, विष्णु के पास भी जाते हैं, बचाओ त्राहि माम। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने जिस भक्त का अपमान किया है, जिसके लिए आपने ऐसा घनघोर कृत्य करने का प्रयास किया है, उनको ही जाके आपको माफ़ी मांगनी होगी, अगर वो माफ़ करते हैं तो फिर मेरा चक्र जो है वो वापस आ सकता है। भक्त के अपराध किए कहने के बाद अगर मेरा चक्र छूट जाता है तो मेरी भी शक्ति नहीं कि उसको वापस बुला लूँ। जिस भक्त का अपराध हो रहा है अगर वो अपराध नहीं मानता है, उसको माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है, तो ही आप बच सकते हो। तो पूरे ब्रह्मा जी का लोक और कैलाश लोक और वैकुंठ लोक पार करके पूरा दोबारा उसको पृथ्वी पे आना पड़ता है, और जहाँ पर अम्बरीश महाराज खड़े हैं, अरे मेरे अतिथि का सत्कार करना था, कहाँ चले गए वो। और कहते हैं एक साल और बीत गया उसमें, तो ऐसे ही खड़े हो, ना उन्होंने भोजन किया है, ना उन्होंने कुछ अन्न प्राप्त किया है, उनके मन में कोई ऐसा भाव ही नहीं है। और वो साधुओं के द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार उन्होंने आचमन किया, बाद में उन्होंने भोजन नहीं किया, अभी अतिथि का सत्कार करना है, लेकिन अतिथि ही अभी है नहीं, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। जाके दुर्वासा मुनि के चरणों में गिर जाते हैं, तब जाकर चक्र जो है ना निकल जाता है। उसमें एक भी रहस्य की बात आचार्य बताते हैं कि जब वो ब्रह्मा जी के पास जाके झुक जाते हैं, तो चक्र पीछे लगे हुए हैं उनके, जैसे ही वो झुक जाते हैं नम्रता से ब्रह्मा के सामने, चक्र वहाँ पर खड़े रहते हैं। जब वहाँ से भागने लगते हैं चक्र फिर दोबारा उनके पीछे भागने लगते हैं। जब शंकर जी के सामने झुक जाते हैं तो चक्र खड़े हो जाते हैं, फिर जब विष्णु के सामने झुक रहे हैं तो चक्र खड़े हैं, दोबारा पीछा कर रहे हैं। जब फाइनली अम्बरीश महाराज के चरणों में झुके तो खड़े होते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि जब अम्बरीश महाराज जी उनको कहते हैं कि मैंने तो कोई अपराध तो स्वीकार किया ही नहीं आपकी तरफ से, मैं कोई ऐसे नहीं महसूस कर रहा हूँ कि आपने मेरे लिए कुछ गलत कार्य किया है, तो एक भक्त की महानता कितने आप देख सकते हो, एक भक्त की भक्ति का बल आप देख सकते हो। ये दुर्वासा मुनि को साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांडों में विख्यात थे। इनका बल, इनकी इनका तपोबल, इनका सिद्धि, इनकी शक्तियाँ और क्या क्या कर सकते हैं इसका वर्णन सब जानते थे, सब डरते थे उनसे। ये वैसे बरसाना में भी पहुँच गए थे और वो गोपियों को शाप देने वाले थे, जलाकर भस्म कर दूंगा। उधर भी गए थे, दुर्योधन के द्वारा भेजे गए थे, वो काम्य वन में पांडवों के पास भी गए थे वनवास में, और उनको भी डर यही था कि अरे हम उनको अगर भोजन नहीं दे पाएंगे तो शाप दे देंगे, सर्वनाश हो जाएगा हमारा, वैसे भी बुरे दिन चल रहे हैं, बस दुर्वासा मुनि का अगर आतंक हो गया तो और कष्ट हो जाएगा। मतलब बड़े बड़े महारथी भी उनसे डरते थे, इतना उनमें क्रोध था, बल था। और ये अत्रि और अनसुया माता जी के पुत्र थे और शिव जी के अंश थे, और बड़े वैसे महान भक्त हैं भगवान। भगवान की लीला में कई जगह सम्मिलित हैं, लेकिन उनका जो स्थिति है वो भगवान स्वयं उपयोग कर रहे हैं उसका हमको बताने के लिए। एक पात्र बना दिया उन्होंने उनके पूरे नाटक में, जिसके द्वारा वो विश्व के हर व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि देखो लोग, दुनिया के लोग सब प्रभावित है ना कर्मकांड के प्रभाव से, कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, देखो मैंने ये यज्ञ किया तो मैं धनवान हो गया, मैंने वो यज्ञ किया तो मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं ये यज्ञ किया तो मंत्री हो गया, ऐसे कई लोग गर्व करते हैं। फिर कुछ लोग हिमालय जाते हैं और तपस्या करके कोई ऐसा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं कि वो आकाश में उड़ सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, नदी में प्रवेश करके कहीं और प्रकट हो सकते हैं, ऐसे कई सारी सिद्धियाँ हैं, वैराग्य का भी चमत्कार हो सकता है, ऐसे कई चमत्कार हैं। लेकिन हम लोग दामोदर अष्टक में भी गाते हैं ना, कौन सा श्लोक है वो, सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि मैं किसी भी कर्म कांड के बल से, सिद्ध कांड के बल से, उपासना कांड के बल से, तपो बल से प्रभावित नहीं हो सकता, मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं केवल भक्ति में वश होता हूँ, भक्ति मुझे वश कर सकती है, ऐसे मैं उन सारे तपस्वियों को, ध्यानियों को बताना चाहता हूँ। ऐसे भगवान बोल रहे हैं उसके, वो सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं उनको कि अनंत काल तपस्या करने के बाद भी, हजारों वर्ष व्रत करने के बाद भी, इन ध्यानियों को, तपस्वियों को भगवान के जो 20 नाखून है ना, 10 हाथ के और 10 पैर के, उनमें से जो अनंत प्रकाश दिव्य आभा के किरण निकलते रहते हैं, उसमें से एक भी किरण उनको दर्शन नहीं होता है उसका, इतना सब करने के बाद, अनंत जन्मों तक के बाद भी। और वही भगवान जो इतने दुर्लभ है, योगी भीर ध्यान गम्यम अगम्यम, इतने दुर्लभ जो भगवान है वो गोपियों के ताली बजाने पर नाचते हैं, और वो कहते हैं अभी माखन दो, तो थोड़ा सा माखन देते हैं, और चाहिए तो और नाचना पड़ेगा। फिर परब्रह्म परम परात्पर भगवान गौलोकेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक क्या कर रहे हैं, बार बार नाच रहे हैं, ठुमक ठुमक के नाच रहे हैं थोड़े से छाछ के लिए। तो किसके मुँह के हैं वो छाछ भी उनका ही है, मक्खन भी उनका ही है, सब उनका है। फिर वो भीख क्यों मांग रहे हैं, उसकी भिक्षा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि भिक्षा तो प्रेम की मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, वैकुंठ के जो अनंत भोग है इसकी हम यहाँ पर बैठ के कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने दिव्य और सूक्ष्म और महान प्रकार के भोग वहाँ पर ऐश्वर्य उपलब्ध है। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, ऐसे अनंत लक्ष्मियाँ उन भगवान की सेवा में तत्पर रहती हैं सारे ऐश्वर्यों के साथ। वो सुख छोड़कर भगवान ब्रज में माखन चुराने को आते हैं। ये गोपियों का छाछ, हाँ, अहीर की छोरियां छचिया पर छाछ के कारण भगवान को नचाती हैं। इतना सा छचिया मतलब मालूम है कितना होता है? छचिया मतलब रात में दूध में दही बनाने के लिए कितना दही की जरूरत होती है, उसको छचिया पर छाछ दूध के दही कहते हैं। छचिया नहीं, उतना सा, एक चम्मच कह सकते हैं उसको आप, एक हाँ थोड़ा सा डालते ना उसमें, उतना छाछ के लिए ये अहिर की छोरियां यानी गोपियां जो है ना गुर्जरी सब उनको नचाती हैं और वो भी नाचते हैं, जो घर में जा जाके चोरी करते हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं कि लोग तो बड़े प्रभावित हैं, कर्मकांड करना है, हिमालय में जाना है, सिद्धि प्राप्त करके आना है, फिर हाथ लगाएगा तो बीमार ठीक हो जाएगा, उसको हाथ लगाए तो विवाह हो जाएगा, उसको हाथ लगाएगा तो ये हो जाएगा, जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे लोगों को लगता है कि मुझे ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए कि जो चाहिए लोगों को मैं तुरंत एक क्षण में पूरा कर सकता हूँ, खास करके बीमारियाँ, ऐसे हाथ रखा तो फिर कैंसर गायब, कितना अच्छा रहेगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास ऐसा सिद्धि है तो कुछ करना नहीं है, पेशेंट आएंगे एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हाथ रखेंगे तो बीमारी पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा हाथ रखेंगे आउट देख आउट, कितना अच्छा रहेगा ना, और कितना नाम और कीर्ति होगी हमारी उसकी वजह से। लेकिन इन सारी चीज़ बेकार है एक्चुअली भगवान के सामने। ये सारी चीज़ों को करने के बाद भी लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तो भगवान के चरणों में ऐसी अनंत सिद्धियों के पहाड़ ऐसे पड़े रहते हैं उनके चरणों में, ये सब सिद्धि देवियां जो है ना उनके चरणों में पड़ी रहती है, पीछे पीछे भागती है उनके, वो उनको पूछते भी नहीं है। यहाँ तक कि जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो जो शुद्ध भक्ति भगवान के लिए करते हैं निस्पृह होकर, उनके पीछे ये सिद्धियां हाथ जोड़े भागी रहती भागती रहती हैं। मुक्ति भुक्ति और सिद्धि, ये तीन देवियां जो हैं ऐसे हाथ जोड़कर भगवान के भक्तों के पीछे भागती रहती है, लो 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 आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं। और भक्त लोग उनको मुड़ के भी देखते नहीं कभी, नॉट इवन वंस। लेकिन जब कोई व्यक्ति इनके आमंत्रण के वजह से मोहित होकर पीछे मुड़ता है तो वो फिर भागने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी छाया को देखा? आपने छाया, जब सूरज आता है छाया गिरती है, जब आप छाया के विरुद्ध दिशा में जा रहे हो तो छाया आपके पीछे पीछे चलती रहती है, चलते कि नहीं चलती? और आप छाया को पकड़ने का कोशिश करो उल्टा घूम के, अभी चलो छाया को भी पकड़ लेते हैं तो छाया आपसे दूर भागती रहती है। ये सिद्धि मुक्ति और जो सिद्धि मुक्ति और भुक्ति यानी भोग जो है ना, ये ऐसे रहते हैं, जब आप उनके पीछे भागेंगे तो वो दूर दूर भागते रहेंगे, वो मिलेंगे नहीं आपको। जब आप उसको देखेंगे भी नहीं तो आपके पीछे पीछे भागते हैं। तो भक्तों की भक्ति की जो महिमा है उनको केवल भगवान की भूख है, उनकी क्षुधा जो है, क्षुधा यानी भूख केवल भगवान के लिए। वैसे कई उदाहरण शास्त्र में आते हैं कि भक्ति ने सिद्धि या उपासना या व्रत या तपस्या को परास्त कर दिया है। हाँ, हमारे ब्रज में आप देखेंगे तुलसी मुनि गए थे हिमालय में और गोवर्धन को उठाकर जा रहे थे, उनको काशी में लेके जाना था, उनको बीच में लघु शंका का वेग आया, उन्होंने कहा था कि आप मुझे रखेंगे बीच में कहीं भी तो मैं उठूंगा नहीं, फिर आपको उठाए रखना है और उठाकर ही चलना है, जहाँ पर रखोगे पहली बार वहीं मैं रह जाऊँगा, तो हाँ बोला था उन्होंने। लेकिन जैसे ही ब्रज आया वृंदावन धाम, तब इनका गोवर्धन का जो भाव भक्ति का जो है वो इतना विभोर हो गया भाव से कि मेरे ठाकुर जी की जगह है, ये मेरा सेवा का स्थान है, मेरे ठाकुर जी यहाँ पर आएंगे, ये सत्ययुग की बात चल रही है, तो भी द्वापर में आने वाले, बहुत दूर की बात है, भाव विभोर हो गए। तो उस भाव विभोर उनकी इतनी तीव्र इच्छा हुई कि मुझे यहीं रहना है, उनको तो पता ही था कि वहीं जाना है उनको। उसके वजह से जो लघु शंका का वेग आया पुलत्स्य से मुनि को कि वो कुछ क्षण सब भूल गए, ऐसा वेग आया कि वो धाड़ के रखा और भागे तुरंत, लघु शंका किया उन्होंने, वो दौड़ लौट के शुद्ध होकर स्नात होकर लौटे तो गिरिराज को उठा नहीं पाए। ऐसा उठा के लेके आ रहे थे आराम से, और वो गिरिराज वो नहीं था जो द्वापर में भगवान ने उठाया था, वो तो शापित था, बहुत जमीन में ढंसकर पैदा हुआ जो गया हुआ जो गोवर्धन है उसको भगवान ने उठाया था। ये तो ओरिजिनल गोवर्धन पर्वत है, पूरी अपने पूरे ऊंची के साथ, ऊंचाई के साथ करोड़ों योजन आकाश में ऊंचे थे वो, उसको ऐसे गेंद की तरह उठा के ले जा रहे थे वो, इतना बल था उनके अंदर, प्रकाश मतलब तेजस्वी ओजस था उनके अंदर, तप का बल था। लेकिन जैसे भक्त की इच्छा हुई कि मुझे यहाँ रहना है तो लघु शंका से ग्रस्त हो गए वो, ऐसे मुनि थे वो कि उनको कोई लघु शंका क्षुधा प्यास तृष्णा कभी त्रस्त करती नहीं थी, निद्रा किसी प्रकार का वेग उनको कभी वश, वो सबको वेश वेग अपने वश में कर चुके थे, ऐसे योगी थे वो, फिर भी गोवर्धन की इच्छा के शुद्ध भक्तिपूर्ण मार्ग में की हुई इच्छा के प्रभाव से वो लघु शंका के वेग में ग्रस्त हो गए और बाद में उसको उठा ही नहीं पाए, तो श्राप दे के गए उठते नहीं हो तो रोज एक तिल के आकार के नीचे धस जाओगे जमीन के अंदर, एक दिन नष्ट हो जाओगे। बोला कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, जो देना है दे दो, मैं तो बोल दिया आपको, मैं भी कुछ मेरे वचन को भंग नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही कर रहा हूँ, और आपको जो श्राप देना है दे दो, वहीं खड़े हो गए हो। उनको ये श्राप आपसे फर्क नहीं पड़ता है, भगवान की सेवा के सामने श्राप दो वरदान दो हु केयर्स। तो उसमें क्या हुआ, गोवर्धन गिरिराज जी का जो हरि भक्ति का बल है उस हरि भक्ति के बल ने पुलस्त्य मुनि के तपोबल को नष्ट कर दिया, परास्त कर दिया। यहां पर भी वही हो रहा है, इतना आवेग में आकर क्रोध में आकर इतने घमंड से वो राक्षस को पैदा किया कि मारो इसको, इतनी सी बात पर ये ना जानते हुए कि अम्बरीश महाराज क्या कर क्या रहे हैं, उन्होंने किया क्या, सलाह किया नहीं किया, भाव क्या था उनका, वो सब छोड़कर, भगवान तो भावग्राही होते हैं, और ये ऋषि खाली देख रहे मेरा अपमान कर रहे हैं, अपमान तो हुआ ही नहीं उनका, अपमान किया ही नहीं, फिर भी अपमान स्वीकार कर लिया और इतना भयंकर कार्य किया, एक जटा को एक बाल निकाल राक्षस को निर्माण किया। हम सबको पता होना चाहिए कई बार भौतिक दुनिया में ना हमको किसी को श्राप देने की इच्छा होती है, और कभी कभी किसी को देखकर वरदान देने की इच्छा भी होती है, लेकिन दोनों समय पर हमारा जीवन का जो हमने अचीव किया हुआ जो आध्यात्मिक बल है या कुछ भी कह सकते हैं आप, जितना हमने अचीव किया है वो एक एक श्राप और वरदान के हाथ नष्ट हो जाता है। इट्स लाइक आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपको 1 लाख रुपये देने की इच्छा हो गई, मुझे तो कितना हो गया 99 लाख बच गया, 1 लाख खत्म हो गया, और किसी को लगा 50 लाख दे दूँ तो 50 लाख ही बचेगा, मतलब वो ऐसे वरदान देना श्राप देना कोई ऐसे इजी चीज़ नहीं है, तथास्तु ऐसा नहीं होता है। तो एक इतने से अपमान तथाकथित सही भी नहीं, वो तथाकथित अपमान के लिए इतना बड़ा तपोबल से बनाया हुआ बाल जो है वो उखाड़ कर उसको पटक कर राक्षस को निर्माण किया जा रहा है, जरूर बहुत सारा तपोबल उन्होंने इस्तेमाल किया होगा ना उसको पैदा करने के लिए भी, क्योंकि सिद्धियों के सारे जो शक्तियाँ होती हैं ना वो बालों में होती हैं, इसलिए आपने शास्त्र में पुराणों में कहीं पढ़ा होगा वो मुनि ने बाल उखाड़ के जमीन पर डाला तो पूरा स्फोट जैसा हो गया और एक भयंकर राक्षस पैदा हो गया, कई कथाएं आती वहाँ पुराणों में या भागवत में भी आती। तो इसलिए भगवान ये बताना चाहते हैं इस माध्यम से कि मेरे भक्त के ऊपर कोई नहीं है, कितना भी बड़ा प्रभावी हो, कितनी भी बड़ी सिद्धियाँ हों, कितनी भी बड़ी शक्तियाँ हों, कितना भी बड़ा इतिहास हो व्यक्ति का, और उसके सामने मेरे भक्त ऐसा सामान्य दिखता होगा, उसका कोई तपोबल भी नहीं, कोई व्रत भी नहीं किया उसने, कोई कुछ भी नहीं किया है, बोला मैं परवाह नहीं करता उसको, मैं केवल मेरे भक्त के हृदय का जो प्रेम का नवनीत है उसका स्वादन आस्वादन करने के लिए आता हूँ, और वो प्रेम के नवनीत के आस्वादन के सामने मुझे किसी योगी का तपोबल से कोई लेना देना नहीं, आई डो नॉट केयर, कई बार बता दिया भगवान ने ऐसे। और ये जो क्रोध दिखा रहे हैं ना इसमें क्या होता है, अब ये जो क्रोधित हो गए हैं छोटी सी बात पे, अपने मन का संतुलन वो व्यक्ति खो बैठता है जब उसको क्रोध आता है, चाहे वो महासिद्ध व्यक्ति हो परम सिद्ध व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसको क्रोध आता है कभी उस समय पे तो क्रोध के प्रभाव से वो कुछ समय के लिए क्यों ना हो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है पूरी तरह से, सारा ज्ञान उसका उसके लिए एक तरह से नष्ट होता है, मतलब उसका ज्ञान का सार उसको उपलब्ध नहीं होता है उस समय सोचने के लिए, इसलिए क्रोध जो है ना वो भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि क्रोध से आध्यात्मिक उन्नति भी जल जाती है, कमाई हुई अर्जित की हुई आध्यात्मिक उन्नति भी है वो नष्ट हो जाती है। क्रोध से क्या नहीं होता है, क्रोध से जो जो आपने प्राप्त किया है भौतिक दृष्टि से भी, धन प्राप्त किया है, प्रभाव प्राप्त किया है, क्रोध में कुछ बोल दे तो नष्ट हो सकता है वो, और क्रोध में कोई वचन बोलते हैं ना उसको वापस नहीं ले सकते हैं। अभी राक्षस को छोड़ दिया उसने, अभी भाग रहे हैं सब जगह पे, राक्षस को वापस नहीं बुला सके वो, लेकिन राक्षस को मार दिया चक्र ने, वो बात अलग है। लेकिन चाहते हुए भी क्रोध के द्वारा किए हुए बोले हुए वचन जो है ना वो जो नुकसान कर देते हैं उसको हम लोग बाद में डिलीट नहीं कर सकते सॉरी बोलकर, है ना। ऐसे और कोई धर्म के शास्त्र में ऐसा उदाहरण आता है, एक माँ बोल रही है कि देखो एक किला ठोक दो दीवार में, हाँ ठोक दिया, अभी उसको निकाल दो, निकाल दिया, तभी क्या किला था ठोका था निकाल, हाथ में किला आ गया, निकाल दिया, बचा क्या, क्या बचा, दीवार में एक छेद बचा, वो छेद को आप पैचअप करेंगे कुछ भी करेंगे तो हमेशा दिखेगा वो कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ था, थोड़ा सा पैचिंग वर्क किया गया है। उस तरह से आपने क्रोध भरे शब्दों से कुछ वचन कहे, क्रोध वचन बहुत जोरदार, तो वो हृदय पर किले ठोकने जैसा है, बहुत खून बहेगा उसके अंदर से, बहुत बड़ा छेद होगा, फिर आपको पश्चाताप होगा, अरे मैंने ऐसा क्यों कहा, तो आपने बोला सॉरी माफ कर देना मुझे, वो मतलब है कि आपने वो किला निकाल दिया, लेकिन बचा क्या उधर, एक बड़ा जख्म, बहता हुआ जख्म जो है बच गया उधर, फिर कालांतर में वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका स्कार जो है ना वही रहेगा। स्कार को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ चिन्ह रहेगा वैसे ही उसका, बार बार याद दिलाएगा, कितना भी आपने माफी मांगकर उसको गिड़गिड़ा कर दंडवत करके कर दिया होगा ठीक, उसने भी ठीक किया कि हाँ ठीक है भाई सॉरी आई ऑल राइट डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर का जो अनुभव है ना वो बंद नहीं हो सकता है, वहीं रहेगा वो। इसलिए क्रोध करने के पहले हमारे माता हमको बताती थी कि 10 बार राम का नाम लो फिर क्रोध आने के बाद कुछ बोलो, ये हमारे कुछ गुरु भाई हैं वो ऐसे बोलते हैं क्रोध आने पर कुछ ऐसा लगता है कि अभी मैं कुछ कर डालूं, तो कहते हैं सो जाओ 1 घंटा के लिए, सो के उठो फिर सोचो करना है कि नहीं करना है, क्योंकि क्रोध के वश में कुछ भी करेंगे तो वो गलत ही करेंगे। एक ही हनुमान जी ऐसे जो क्रोध में बढ़िया काम करते हैं भगवान की सेवा में बहुत शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा करते हैं, बाकी सब लोग क्रोध में नुकसान ही करते हैं, विनाश ही कर देते हैं, क्रोध में किसी का कल्याण नहीं होता है कभी। क्रोध ये बहुत बड़ी भयंकर चीज है, और क्रोध अक्सर कब आता है, जब मुझे जो अपेक्षित है वो जब पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है ना। इनको अपेक्षित क्या है, मेरा सम्मान किया जाए, अब मुझे पहले भोजन दिया जाए, जल भी ना पिया जाए, फिर आपको जल लेना है जब मुझे संतुष्ट करेंगे, वो नहीं हुआ, एक अपेक्षा थी उनकी वो नहीं पूरी हुई, अपेक्षा भंग हुआ तो क्रोध हुआ है ना। जब काम अपूर्ण असंतुष्ट होता है, काम यानी हमारी भौतिक इच्छा, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। और एक बार आदमी का क्रोध आया ना, जब तक क्रोध के प्रभाव में है उसका विनाश जो है ना वो बहुत तेजी से चलता है। एनीवे दुर्वासा मुनि भी यहाँ पर एक पात्र बन रहे हैं, वो कोई ऐसे हमारे कुवचन के लिए योग्य नहीं है, यहाँ पर वो एक पात्र बन रहे हैं हमारे लिए, इतने महान व्यक्ति जैसे भीष्मदेव पात्र बने थे, और उनको भगवान ने कुरुवंश की तरफ से युद्ध करने के लिए बताकर ये बता दिया कि आप भीष्म जैसे भी महान महान महानोत्तम व्यक्ति होंगे तो भी अगर असत्य के पक्ष में युद्ध करेंगे तो आपका विनाश निश्चित है, ये दिखाने के लिए उन्होंने भीष्मदेव को वहां से पात्र बनाकर युद्ध करवाया, द्रोण को करवाया। उसी तरह से यहाँ पर दुर्वासा मुनि को पात्र बना रहे हैं ताकि हम उनसे कुछ सीखें कि अगर आप दुर्वासा मुनि जैसे इतने सिद्ध व्यक्ति भी होंगे महान, इस पर पूरा विश्व कांपता है उनको देखकर, वो भी मेरे भक्त के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें भक्त बनना चाहिए। कार्तिक का महीना है, पुकार है भगवान की, भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कारो, मुझे ही प्रणाम करो, मेरा ही नाम पुकारो। लोग सोचते हैं क्या गर्विष्ठ आदमी है ये, मुझे ही पूजो, मुझे ही प्रणाम करो, मुझे ही भोग अर्पण करो, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मम प्रवस्त प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवत्तते, क्या अहंकार का दर्प है, पूरे गीता में गूंज रहा है अहंकार का, भगवान का दर्प। लेकिन अगर समझो मैं गृहस्थ हूँ, मेरी पत्नी है और मैं बता दिया कि ये मेरी पत्नी है, मैं इनका पति हूँ। फिर मेरे बच्चों को दिखाऊंगा ये मेरा बच्चा है, और बच्चे को बोलूँगा देखो मेले में जा रहे हैं, सारी आपकी सुरक्षा मेरे हाथ में है, मेरी उंगली को छोड़ना नहीं, मेरी उंगली को छोड़ोगे तो गुम हो जाओगे। तो लोग सुनने वाला कहेगा कितना गर्विष्ठ पिता है, कितना गर्व है उसका। और गर्व नहीं सत्य है वो। एक होता है गर्व, एक होता है सत्य। अगर मैं मेरे बेटे के लिए कहता हूँ कि मेरा बेटा है, मेरे पत्नी को कहता मैं इसका पति हूँ, तो वो गर्व की बात नहीं है, वो तो सत्य है। तो भगवान बता रहे कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करने में तुम्हारा कल्याण है। तो वो द्वेषी व्यक्ति को लगता है कि बहुत अहंकारी व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं नम्र है उसको पता चलेगा ये सत्य है, भगवान सत्य से अवगत करा रहे हमको, कोई अहंकार वाली बात नहीं कर रहे। तो इसलिए शुद्ध रूप को स्वामी बताते हैं कि शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा जो होती है ना, वो भगवान किसी को जनरली जल्दी देते नहीं है। वो बोलेंगे आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए लो लो पैसा लो, अच्छी बीवी चाहिए ले लो, अच्छे पुत्र चाहिए, बच्ची की शादी होनी चाहिए, जो चाहिए वरदान दे सकते हैं, भगवान तुरंत पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन भक्ति मांगेंगे तो बहुत थोड़ा वेट कराएंगे आपको, क्योंकि प्रॉब्लम उसके अंदर ऐसा है कि जब आप शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हो या भगवान आपको देते हैं, इसका मतलब भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस व्यक्ति के लिए। शुद्ध भक्ति का जो छठवा गुण है रूप गोस्वामी के अनुसार प्रथम अध्याय में, भक्ति रसामृत में प्रथम अध्याय में उन्होंने कहा है छह भक्ति के लक्षण, उसमें छठवा लक्षण जो है वो श्री कृष्ण आकर्षणीय है। और जिस चीज से श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं शुद्ध भक्ति, वो आकर्षित होने के बाद में उसके हो जाते हैं। जैसे कि वो नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं गोपियां, पर वो नाच रहे हैं। ये परम परब्रह्म है, परम सब चीज के निर्माता है वो, उनके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वो नाच रहे हैं तो ऐसा होता है उनकी स्थिति। इसलिए वो शुद्ध भक्ति देने के पहले थोड़ा सा देखते हैं कि पात्र योग्य है कि नहीं, और योग्यता तक रुकते हैं। और हम लोग साधना करते हैं, बोलते हैं मुझे भक्ति चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। हाँ, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयी, आपकी अहेतुकी भक्ति मुझे मिलती रहनी चाहिए। ये बोलना बहुत आसान है, रोज सुबह शिक्षाष्टकम में, प्रार्थना में, प्रवचन में ये डायलॉग मारना बहुत अच्छा है, आसान है, बहुत प्रभावित भी कर सकते लोगों को। लेकिन वो जब हृदय से वो प्रार्थना होती ना, और भगवान देखते हैं कि हाँ अभी निस्पृहता से मुझे पुकार रहा है वो, तो भगवान न केवल भक्ति देते हैं, अपने आप को भी अर्पण कर देते हैं, अपने आप को भी अर्पण कर देते हैं। तो जो मेरा नाम पुकारता है मैं उसके पीछे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, जो मेरा नाम पुकारता है, राधा रानी का नाम पुकारता है, मैं उसके पीछे स्वयं सुदर्शन चक्र लेके चलते रहता हूँ, मेरे पीछे शिव जी महाराज त्रिशूल लेकर चलते रहते हैं, उसके पीछे इंद्र वज्र लेकर चलते रहते हैं, और उसके पीछे वरुण जो है वो छत्री लेकर चलते रहते हैं। तो सुरक्षा भी है, आदर सम्मान भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है। स्वयं ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के लिए उधर ब्रह्मलोक में पूजा की तैयारी करने लगते हैं, कोई आएगा तो यहाँ से जाएगा गोलोक वृंदावन। तो ब्रह्मा जी अगर खड़े रहेंगे उस भक्त के सामने तो वो 50 बार दंडवत करेगा उनको, इतने महान है ब्रह्मा का दर्शन भी दुर्लभ है, सत्व गुण का परिपोष है वो। लेकिन वो ब्रह्मा जी उस भक्त का पूजन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि मुझे भी जो भाग्य मुमकिन नहीं है इस भक्त को मुमकिन है। हमारे ब्रह्मा जी देखो भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए ब्रज में आए थे, तो भगवान का प्रसाद खाएंगे, देख रहे हैं सब भक्त के बीच में भगवान खा रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, वो देखते हैं कि हाथ धोने के लिए जमुना जी में जाएंगे, और जमुना जी में जो हाथ में होता है ना लगा हुआ कुछ, धोएंगे तो जमुना जी में गिरेगा ना वो, तो वो मैं खाऊंगा इसलिए मछली बने वो, और वेट कर रहे हैं कि अभी भगवान आएंगे, अभी हाथ धोएंगे जमुना जी के जल में बहते हुए, और मैं मछली बनकर वो महाप्रसाद खाऊंगा। तो भगवान ने अपना भोजन समाप्त किया बड़े प्रेम से, और गए जमुना जी के पास हाथ धोने के लिए, देखा तो मछली घूम रही है, तो भगवान ने दोना में जल लिया और जमीन पर हाथ धोया। अब ब्रह्मा जी वैसे रह गए, मतलब जो स्वयं भगवान है ना, अपने हाथ से भक्तों को खिला रहे हैं, और वो आधा काटा हुआ जो अन्न है वो अपने मुंह में डाल रहे हैं, अपने मुंह से जो खा रहे हैं वो उसको उनके वो ग्वाल बाल जो है वो छीन रहे हैं उसको, और वो अपने मुंह में डाल रहे हैं। इस प्रकार से खा रहे हैं वो, कितना अधिकार है वो वाल वालों को। इधर तो ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपात, तूने सारे मंत्रों का उच्चारण करके भोग लगता है वैकुंठ में, और वो पूरा भोग लगने के बाद में वो पिनान से उसको उतार कर फिर बचा हुआ भक्तों को प्राप्त, देवताओं को प्राप्त होता है। ये भी कोई तरीका है भोग लगाने का, वो उनको खिला रहे और मुंह से छीन रहे उसके, और वो भी लोगों के मुंह से छीन रहे। वो स्वयं कृष्ण गए थे वो मधुमंगल को देख रहे, मधुमंगल अकेला अकेला वहां पर कोने में जाकर लस्सी पी रहा था, बोले सब लस्सी लोगों को बांटूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं कुछ, इसलिए पात्र जो है ना ऐसे ऐसे गटाकट गटाकट पी रहा था। तो आखिर सब भक्त सब ग्वाल बाल भाग के, अरे मधुमंगल देखो यहाँ पर लस्सी पी रहा अकेला, हम सब लोग बांट के खा रहे हैं। तो सब भागते हैं तो ये क्या करते हैं ना एकदम घटाघट, तो सब गाल उसको फूक जाते हैं लस्सी से, तो भगवान ऐसे झम मारते उसके ऊपर एक गुलचा देते उसको, और उसके मुंह से वो लस्सी की धार निकलती है। और उस ये सब मैं बता भी रहा हूँ तो बहुत मेरे को टाइम लग रहा है बताने में, लेकिन ऐसे एक फ्लैश ऑफ सेकेंड में हो जाता है, उनका गुलचा लगाना और धार निकलना और हाथ पकड़ के उसको पीना, ये ऐसे हो सकता है क्या? हम लोग कर सकते हैं ऐसे? वो भगवान स्वयं अपनी इच्छा से कर रहे हैं, मधुमंगल के मुख से निकली हुई लस्सी की धार को पी रहे हैं, इतना अधिकार है भक्तों को, और भगवान अपने को धन्य मानते हैं ये सब करने में, कोई संकोच नहीं उनको कि देवता क्या कहेंगे, वो महादेव जी क्या कहेंगे, वो ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे। अरे जैसे कि समझो आप प्रधानमंत्री हो, हाँ, और आपका पोता बोल रहा है दादाजी घोड़ा बनो मुझे आप पर बैठना है, आप सैर कराओ मुझे, दादाजी प्रधानमंत्री झुक जाते हैं, तो पोता बैठता है और हैट हैट करके उनको चलाता है। तो प्रधानमंत्री सोचता नहीं है मेरे मंत्रीगण आएंगे अर्थमंत्री और सुरक्षा मंत्री तो क्या कहेंगे, घोड़ा बनकर घूम रहे हैं। प्रेम के सामने उनको कोई संकोच नहीं है कि मेरा ऐश्वर्य वाली स्थिति क्या है, मेरे में कितने अधिकारी मेरे सलाम करते हैं मुझे और मेरे आज्ञा का पालन करते हैं, मैं कितने बड़े देश का संचालन करता हूँ, वो सारा एक जगह पर है ऑफिस। और पोता बोलेगा घोड़ा बनो तो तुरंत घोड़ा बन जाते हैं, क्यों बनते हैं? प्रेम है वो, प्रेम, प्रेम की वजह से कुछ भी बनता है। भगवान जूठन भी खा रहे हैं, ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, इतना हम लोग इतना मंत्र बोलते हैं तो फिर भोग लगाते हैं, यहाँ पर तो कोई विधि विधि कुछ है ही नहीं, ऐसा ही चल रहा है आनंद, ये सही नहीं है, लगता नहीं है भगवान, ये तो सामान्य व्यक्ति है। वैसे भी ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति को किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए, ये तो वो वैसा भी ब्राह्मण भी लगता नहीं मुझे, तो ऐसा ही कोई लड़का होगा। लेकिन वो परम भगवान है, परम ब्राह्मण है, परम क्षत्रिय है, परम वैश्य है, परम शूद्र भी है भगवान। ऐसा शूद्र बनकर कार्य और किसी ने नहीं किया है जो भगवान ने किया है, अर्जुन के सारथी बने वो, इतना इतिहास में आज पर उसका गौरव होता है, ऐसा फोटो लगाते हैं अपने घर पे, है ना, सारथी बने हुए भगवान का। वो भगवान जता बता रहे हैं बार बार कि भक्ति करो, मैं प्रेम का भूखा हूँ, सब कुछ मेरा दिया हुआ है, लेकिन सब कुछ मैं देने के बाद में जो मुझे आप वापस लौट के देते हो वो भक्ति में डालकर जब देते हो तो मैं वो सब लेता नहीं हूँ, खाली भक्ति लेता हूँ। 50 व्यंजन हो 1000 व्यंजन हो भोग लगाते हैं तो भगवान एक नज़र से सबकी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं। बाकी आपने वो बहुलाश्व के घर में गए थे तो राजा थे बहुलाश्व मथिला के, उन्होंने इतना भोग लगाया उनको, वो भी बड़े प्रेम से खाया उन्होंने। और वो शुद्धदेव के गरीब ब्राह्मण के घर में गए, टाट पर बैठे, टाट पर पत्तल पर खाना खाया, जमीन पर बैठ कर। भगवान, हाँ भगवान जिसके इतनी ऐश्वर्य के साथ देवता लोग पूजा करते हैं, वो भगवान झोपड़ी में जाकर बैठ गए टाट पर, और टाट पर बैठ कर भोजन किया उन्होंने। दोनों तरफ उन्होंने जो भोजन किया वो भोजन नहीं किया, भोजन का जो प्रेम था उसके पीछे उसको ग्रहण किया उन्होंने। राजा भी भक्ति कर सकता है, गरीब भक्ति भक्ति कर सकता है, दोनों की भक्ति में से भक्ति खाली स्वीकार करते हैं, आइटम स्वीकार नहीं करते कि इधर सोने की थाली में खिलाया गया, इधर तो केले के पत्ते पर खाना खिलाया गया। एक तरह से हमारे लिए बहुत आश्वासक बात है ये कि हमें कोई धनवान बनने की जरूरत नहीं है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, जो भी हमारे पास है वो भगवान ले सकते हैं। शबरी ने हर रोज बेर खाके वो चक्खी देके और वो झूठे आधे कटे हुए बेर थे वो डाली अलग अलग, 5 साल की उम्र से 85 साल की उम्र तक रोज किया उसने। हम लोग सोचते हैं कि वो जिस दिन आए भगवान ने उस दिन वो भाग भाग के जंगल में गई ढूंढने के लिए, नहीं, वो हर रोज 5 साल की उम्र से 85 साल की उम्र तक रोज सोचती थी कि आ जाएंगे, क्योंकि गुरु जी तो बोल के गए हैं भगवान का दर्शन होगा, लेकिन पता नहीं मैं भूलने पूछने भूल गई कि कब आने वाले हैं। तब तक गुरु जी चले गए थे, तभी कभी भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं। तो रोज कर रही हूँ, रोज एवरी डे फूल बिन रही है उनके मार्ग पर, उसको सजा रही है, और रोज जंगल में जाकर बेर बिन रही है और हर एक बेर को काट कर जो मीठा है उसको अलग रख रही है हर रोज। अब भगवान पहुंच गए तो लक्ष्मण को बड़ा कष्ट हुआ, क्या है ये औरत, कुछ समझ में नहीं आता है, जंगल की औरत, कुछ संस्कार नहीं कुछ नहीं, कैसे झूठ की झूठे बेर के ला रही है। तो वो प्रकट करते अपना जो असंतोष प्रकट करते हैं, तो भगवान कहते हैं अभी डिस्टर्ब करने का समय नहीं, लीला चलने दो, बाद में बताऊंगा। आराम से बैठ के इत्मीनान से उसको भी खिलाया, लक्ष्मण को भी खिलाया और खुद भी खाया। तो प्रेम की मुखे वो शबरी भिल्ल है, जंगल की औरत है, संस्कार ज्यादा मिले नहीं है, पता नहीं कुछ कल्चर नहीं है, वो सब देखते नहीं हो, हृदय का जो प्रेम का नवनीत है ना उसके भूखे है वो, ये सब कुछ छोड़ कर आते हैं। तो हम लोगों को यही सीखना है, ये सब योग, ये सब सिद्धि मार्ग, ये सब उपासना, ये सब कर्म कांड, ज्ञान कांड, वैराग्य, ये सब फेल हो जाता है भगवान के सामने। भगवान इतना सा भी प्रभावित नहीं होते इन चीज से, क्योंकि वो जानते हैं ये सारा चीज मैंने दिया हुआ है, केवल प्रेम इनका है बस, अगर है तो प्रेम इनका खुद का प्रोडक्शन है, बाकी सारा चीज मैंने दिया हुआ है, सारी साधन सारे जितने भी रिसोर्सेस है वो सब मैंने दिए हुए हैं, इसमें गर्व की बात क्या है, गर्व करना क्यों चाहिए। अभी मैं करोड़पति हूँ, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ और भगवान के सामने डॉक्टर के रूप में प्रार्थना कर रहा हूँ, तो बोले ये तो एक मिनट के अंदर कोई इधर कोई नस फट गई और खून बह गया ना तो सारा नॉलेज फेल हो जाएगा, अंदर डिलीट हो जाएगा पूरा, याद ही नहीं रहेगा कोई, मम्मी को पूछेगा तुम कौन हो और बीवी को पूछेगा तुम कौन हो, यहाँ तक ABC नॉलेज भी नहीं रहेगा उसको, एक एक थोड़ी सी नस फट गई ना दिमाग के अंदर, तो आपका जिंदगी घर का जितना ज्ञान अनुभव आपने इकट्ठा किया है, जितने शास्त्र पढ़े, जितने श्लोक याद किए हैं, तो सारे फेल हो जाएंगे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, एक क्षण में स्मृति नष्ट हो सकती है, एक क्षण में आ भी सकती है, एक क्षण नष्ट भी हो सकती है, क्या बड़ी चीज है उसके अंदर, रटने से और श्लोक याद करने से और पठन करने से पूरा शास्त्र प्राप्त करने से क्या मिलने वाला है, प्रभावित नहीं कर सकते भगवान को अपने ज्ञान के बल से, उल्टा ज्ञान का जो मात्रा है यानी कि जितना ही में आप ज्ञान जितना प्राप्त किया है और भगवान का भजन आपके मन में नहीं है, भगवान का प्रीति आपके मन में नहीं है, तो वो ज्ञान एक बोझ बन जाता है, और डूबने वाले व्यक्ति के सर पे समुद्र में अगर बड़ा मुकुट होगा तो बड़ी तेजी से डूबता है वो, है ना, वो खुद डूब रहा है और बड़ा वजनदार मुकुट भी पहना हुआ है तो और गति से जाएगा नीचे, वो उस तरह से ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो भक्ति के बिना होता है वो एक बहुत वजनदार मुकुट की तरह होता है और समुद्र डूबने वाले व्यक्ति को बहुत तेजी से डुबा देता है। तो ऐसी चीजों को प्राप्त करके फायदा ही क्या है, और सिद्धि आने से तुरंत गर्व उत्पन्न होता है, और जैसे ही घर घमंड उत्पन्न होता है हम भगवान से कोसों मील दूर चले जाते हैं। तो ऐसे वस्तुओं को प्राप्त करके लाभ ही क्या है, जिससे प्राप्त करने से अहम उत्पन्न होगा और उसकी वजह से भगवान दूर चले जाएंगे, जिनको प्राप्त करने के लिए इतना सारा तपस्या और अहम और ये अपना ज्ञान और उपासना और व्रत कर रहे हैं। तो भगवत भक्ति बिना हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा, भगवान के भजन के बिना कौन सा गुण ऐसा है जो भगवान को प्रभावित कर सकता है, इम्पॉसिबल। हरे कृष्णा। अभी कल गोपाष्टमी थी, सोचा 5 मिनट में गोपाष्टमी के बारे में बताएं आपको। कल का दिन बहुत सुंदर दिन था, कल के दिन भगवान को बड़ी गायों का भार जो है जिम्मेदारी सौंप दी गई है ना, तो पता नहीं समय तो अभी कम है बहुत, एनीवेज ग्वाल बाल सब भगवान को चिढ़ा रहे थे कि देखो देखो तुम 5 साल के हो गए फिर भी हमको तुमको बड़ी गाय नहीं दे रहे हैं, अभी बच्चों को घुमाने को दे रहे हैं, क्योंकि तुम पर नंद बाबा का विश्वास नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो, इसलिए बच्चों को ही खिलना खिलौना के रूप में आपको दे रहे हैं। तो रोज बोलते थे ऐसे, बहुत दिन से बोल रहे हैं, इतना कुछ परिणाम नहीं हुआ। वो दिन सप्तमी के दिन यानी कि परसों के दिन ज्यादा ही हो गया कुछ, बहुत ज्यादा उनको बोल दिया, सब लोग ने हंस हंस के मजाक के ठहाका मार के बहुत ज्यादा टीका किया उनके ऊपर, तो बहुत डिप्रेशन में आ गए वो। बहुत सत्य में मेरी पिताजी बाबा मुझ पर विश्वास नहीं करते। वो दिन जब घर पे लौट के आए ना बछड़ों को चलाकर, तो कोई आरती नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई मक्खन का खाना नहीं, कोई स्नान नहीं, कोई लोरी नहीं, कुछ नहीं, सीधे गए और बिस्तर में जाके सो गए। वो तो माता बड़ी दुखी हो गई, क्या हो गया आज? और घर पे क्या हो रहा है? घर पे भी कई दिन से चर्चा चल रही है, अरे वो आजकल मेरे साथ में स्नान नहीं करता है, सुधा कह रही है। जैसे ही मैं कपड़ा उतारने का शुरू करती हूँ तो भाग जाता है और अपने आप एक अलग कुंड में स्नान करके लौट के आता है। तो बाकी सखियाँ बोलती हैं, हाँ अभी तो मतलब बड़ा हो रहा है वो, उसको भी संकोच हो रहा है तुम्हारे साथ स्नान करने के लिए। तो कृष्ण बलराम दोनों ही जाके स्नान करके आ रहे हैं और लग रहा है अभी उसके कपड़े भी उनको टाइट होने लगे हैं। आप पढ़िए गोपाल चौपाल में पूरा विस्तार सुंदर वर्णन दिया है गोपियों की चर्चा। वो एक कंक्लूजन में आते हैं कि अभी वो कृष्ण जो है वो बड़े हो रहे हैं अभी, और नंद बाबा से चर्चा भी करते हैं अभी कितना दिन बछड़े चराएंगे, अभी गाय भी देना चाहिए। तो ब्राह्मणों को बुलाया, डिस्कस किया, चर्चा किया। ब्राह्मणों ने बोला कि अच्छा है, अभी 5 साल की उम्र में भी उनको देना चाहिए, 5वां बर्थडे भी हो चुका है उनका, है ना, 5वां जन्मदिन कभी हुआ जन्माष्टमी के दिन, और गोपाष्टमी कभी है कार्तिक में, है ना, तो 3-4 महीने तो बीच में गए ना, तो बीच में चर्चा हो रही है। तो इधर अष्टमी का जो है कार्तिक शुद्ध अष्टमी का जो दिन है वो बहुत अच्छा है। तो ब्राह्मणों से डिस्कस कर, घर में ऑलरेडी अपना एक प्रगति हो रही है चर्चा में, और वो सप्तमी को कंक्लूजन निकलता है कि कल जो है अष्टमी के दिन हम सारी गायों को कृष्ण को सौंप देंगे और अभी वो दूर दूर चले जाएंगे। तो एक इसको कुछ पता नहीं है, इसको यहाँ पर पूरा चिढ़ाया जा रहा है और वो पूरे चिढ़ जाके सो जाते हैं। वो तो घर में तो तैयारी हो रही है पूरी, उनको बात करने का और समझाने का मौका ही किधर दिया कृष्ण ने। तो सो गए, तो रात भर सो गए, तो सुबह उठ गए लेकिन उठते नहीं है, ऐसे ही मुँह उल्टा करके सो रहे। उनका मॉर्निंग अलार्म भी नहीं बजा वो दिन। वो क्या करते, सुबह उठते तो पहले मुरली बजाते, तो मुरली सब बाल बाल उठ जाते हैं भाग के एकदम, और तयार होकर तुरंत आ जाते हैं। इधर अलार्म भी नहीं बजा फिर भी बाल बाल अपने आप उठ गए, समय हो गया, अलार्म नहीं बजे तो क्या हुआ, जाना तो है ही। तैयार होके आ गए और उनको कहीं कान में खबर गिरी घर में उनके कि कल कन्हैया को बड़े गायों का भार देने वाले हैं। तो बड़े खुश थे वो, और यहाँ पर सुबह लोरी गाई जा रही है तो उठते किधर है, लोरी क्या बोलते हैं उसको, सुबह लोरी नहीं गाते, रात को लोरी गाते हैं, सुबह वो जगाने के गुण गाते गीत गाते हैं। तो वो गा रही है गीत उनको, तो उठता ही नहीं वो, इस तरफ से गा रहे हैं तो उस तरफ से गा रहे हैं, नो रिस्पॉन्स। ऐसे कहते हैं ना, आप सोते हुए व्यक्ति को जगा सकते हो, सोने का बहाना किए व्यक्ति को आप जगा नहीं सकते हो। फिर कहते हैं, अरे कन्हैया उठो, आज तुमको बड़ी गाय देने वाले हैं सब घुमाने के लिए। तो ऐसे झंप हो गए अपने बिस्तर से, कूद गए एकदम। वो दिन एक्सप्रेस स्नान किया उन्होंने, जो जो आराम से रोज होता है ना, समय तो ऑलरेडी लेट हो गया ना, तो एकदम फटाफट सब तैयार हो जाते हैं और देखते बाहर तो क्या सारी गायें, ऐसी लाखों गायें खड़ी है, 108 झुंड में खड़ी हुई है, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के, तिलकिनी, मृदंगिनी, धवली, कमरी, काली, कोरी, पीली, ऐस खड़ी है, सब लोग खुश हैं सब गायें। और कैसे चार चार पैर में हर घुंघरू लगे हुए हैं, मोर पंख लगे हुए हैं, पूंछ में मोर पंख लगे हुए हैं, मखमल की चादर पहने हुए हैं, सिंग पर सोने की टोपियां पहने हुए हैं, गले में इतनी बड़ी सांखली और घंटी सोने की पहनी हुई है, हर प्रकार से अलंकार पहने हुए हैं, उनकी पूजा ही हो रही है, यज्ञ हो रहा है, बड़े आनंदी हो गए वो। और आए कृष्ण बलराम दोनों भैया, सज धज कर लाया उनको, पूरा विस्तार में श्रृंगार किया उनको, और फिर उनके हाथ से सारे गायों का पूजन किया गया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतने लाखों गायों का पूजन को कितना समय लगा होगा और कैसे किया होगा, वो ही जानते हैं, अनेक रूप धारण कर लिए और एक एक का किया कि एक ही रूप में सबका किया, आई डोंट नो। तो वो सब करने के बाद में फिर नंद बाबा फाइनल होता ना, तो एक ऑनर्स मतलब ऐसे कहा जाता है कि ब्रजवासियों में ग्वाल बालों में एक पद्धति है, जब उनके बालक को वो गाय चराने में क्या कहते हैं दीक्षा देते हैं ना उसकी, तो एक छड़ी देते हैं उनको, छड़ी सौंप देते हैं, मतलब अभी आज से तो ग्वाल बाल हो गया, तो रत्नों से भरी हुई चमकती हुई जिसका प्रकाश सब जगह फैल रहा है ऐसी छड़ी देकर वो कृष्ण के हाथ में देते हैं, ले जाओ बेटा शुरू करो। तो सब गोपियों को खबर चल जाते हैं, अभी तो कृष्ण भगवान तो आज जाएंगे बड़ी गायों को लेकर दूर दूर जाएंगे, अभी तो पास पास में घूमते थे वत्सपाल लीला में, कैसा नियम था उसका, नंद भवन के ऊंचे बिंदु पर पहुंचेंगे आप एकदम टॉप छतरी पे, तो वहां से चारों दिशा में जहां तक दिखता है वहीं तक जाना है, क्योंकि नंद विशोदा माई को, नंद बाबा को अगर पता चला कि मुझे देखना है वो कहाँ पर है आज, तो वहाँ से दिखना चाहिए, उतना ही क्षेत्र है उनका, उसके बाहर जा सकते नहीं वो। तो इतने दिन तो इतनी सीमा में घूम रहे हैं, आज उसके पार चले जाएंगे, सब गोपियाँ भी बड़े उत्साहित हो गई। तो गोपियों को चर्चा होने लगी, अरे हमको भी जाना है अभी, आज हमको भी जाना है, लेकिन कैसे जाएंगे, तो खाली बाल बाल जाते हैं। तो राधा रानी सुबल का वेश धारण किया, राधा रानी ने फेटा पहना, लहंगा पहना, लहंगा और पहरा निकाल के धोती कुर्ता पहन लिया, और ग्वाल बाल बनी वो, और छाती पर ऐसा बछड़ा लेकर ऐसे आई जैसे कि मैं भी ग्वाल बाल हूँ, लेट हो गई जरा, मैं लेट हो गया, भाग भाग के आई। और बाकी सब सखियाँ जो है वो भाग भाग के आई, और जब औरतें भागती है ना तो अपना थोड़ा वस्त्र ऊपर लेके भागती है, क्योंकि साड़ी होती है क्या, लहंगा फरिया होता है ऐसा, वो घाघरा होता है ना, तो वो अटकता है, तो पैर ऊपर करके भागे ना। तो इसलिए गोपाष्टमी के दिन सब जगह पर राधा रानी और गोपियों के चरणों का दर्शन होता है, क्योंकि उस दिन बड़े उत्सुकता से अपने नीचे के वस्त्र को थोड़ा ऊपर उठाकर जोर से भागी है भगवान का दर्शन करने के लिए। राधा रानी तो घुस गई ग्वाल बालों के बीच में, और उस दिन राधा रानी ने भी गौचारण किया है भगवान के साथ में। तो उसके बाद में वो निकले हैं दिन भर, उन्होंने बहुत आनंद लिया है। और ये जब जाने शुरू कर दिया तो यशोदा माई नंद महाराज जा रहे पीछे पीछे उनके, तो भगवान देख रहे हैं कि अभी तो जाएंगे कम से कम थोड़ी देर तक आएंगे, लेकिन जा रहे। बाद में कहते हैं पापा बाबा माता जी अभी आप जाओ, मतलब ब्रैकेट में क्या बोल रहे हैं, हमको अपना स्पेस दे दो, हमको भी जाना है, आप कहाँ तक आओगे, हमको अभी हर रोज़ तो आप ऊपर से देखते रहते हो हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज हम दूर जा रहे हैं तो अपने मर्जी से कुछ करेंगे। तो बड़ी मुश्किल से वो उनको रोक देते हैं, आप मत आओ, तो वो खड़े रहते हैं उधर और दूर तक देखते रहते हैं, जब क्षितिज के पार हो जाते हैं तब वो चले जाते हैं अपने घर में। उस दिन यशोदा माई दिन भर बार बार झरोके में आके देखते खिड़की में, क्या सूरज कितना ऊपर है, आज इतना स्लो क्यों जा रहा है, कभी संध्या होगी कभी अस्त में आओगे, हर क्षण में हर पल में हर घड़ी में भाग रहे हैं, आखिर में सूरज आए जाते हैं तो उनको रहा नहीं जाता है। वो कह रहे हैं अभी अभी मैं इतना तो नीचे आएगा, वो लौट के वो ऊपर चढ़ने में और टाइम लगेगा, तो मैं उतना वेट नहीं कर सकती, चलो सखियों सब थालियाँ बनाओ, स्वागत की थालियाँ बनाओ, मिठाई सब आरती पूजा के सामान बनाओ, हम नीचे जाएंगे पर्वत के। नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, भगवान लौट के आते हैं। अब क्या होता है, भगवान दूर गए ना तो नेचुरल थक जाते हैं, उनको तो पास में जाने की आदत है। आज भी जो खदीरबन का लिमिट है वो वहाँ से 4 किलोमीटर है, लेकिन वृंदावन 50 किलोमीटर है आज की स्थिति में भी। मधुवन तो उसके भी आ गए, तालवन उसके भी आ गए, कुमुदवन उसके भी आ गए, तो वो बेचारे थक गए। तो ग्वाल बाल देख रहे हैं, चेहरे में थकान दिख रही है उनके, और ये चेहरा अगर यशोदा माई देखेगी तो बोलेगी कल छुट्टी, कल नहीं जाना है, उनको देखा नहीं जाएगा, अरे मेरा बालक थक गया, इतने बड़ी जिम्मेदारी दी आपने। तो उसने क्या किया, जैसे नंदगांव के पास आए ना, वो हंसी मजाक विनोद हास्य से विनोद करना शुरू किया, कविता ऐसे कुछ जोकिंग कविताएं गाने लगे, बहुत फनी चीज़ों का वर्णन किया, क्या क्या ऐसे, मतलब उस वाक्य में कुछ मतलब नहीं है लेकिन वो बोलने से आप हंसते ही रहेंगे, ऐसे उनको इतना हंसाया। तो जब वो लौट कर नंदगांव के पास आ गए तो एकदम ऐसे प्रफुल्लित दिख रहे थे वो, अब वैसे ही मूड में उनको घर पहुंचाया उन्होंने, ताकि मैया देखे मेरा बालक जो है ना बिल्कुल थका नहीं, बहुत ही खुश होकर लौट के आया है, और कल भी जाने दो उसको। तो आए लौट के तो फिर उन्होंने 1.5 कदम पे चढ़े, वो कदम के पेड़ पर चढ़े, सबसे ऊपर चोटी पर चढ़े, और वहाँ पर बैठकर उन्होंने छठवीं धुन बजाई। मुरली की जो छठवीं धुन बजती है ना, दो काम होते हैं, इच्छा के अनुसार, दोनों काम साथ में नहीं होते हैं, जब जो भगवान को चाहिए वो होता है, लेकिन दो परिणाम उसके होते हैं। एक, छठवीं धुन बजाने के बाद में पत्थर पिघल जाते हैं, जहाँ पर भी खड़े हैं वहाँ से पत्थर पिघल जाते हैं। पत्थर को पिघलता है, कभी कोई टेक्नोलॉजी है क्या आपके पास ऐसे? आप लोहे को पिघला सकते हैं, सोने को पिघला सकते हैं, बड़े बड़े मेटल को, धातु को पिघला सकते हैं, लेकिन पत्थर को पिघलने वाला कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी भगवान के पास है। तो मुरली बजाते तो पिघल जाता है। और दूसरी धुन बजाने, दूसरा परिणाम उसका ये है, भगवान की इच्छा के अनुसार वो धुन बजाने से सारी गायें जो है वो पागल सी हो जाती हैं, भाव विभोर होकर भगवान के पीछे भागती हैं। जो बछड़े लोग दूध पी रहे हैं गाय के थन से, वो भी आ हो जाते हैं, दूध उनके मुंह में है थन से आया हुआ, और आ होने से एक एक बूंद जो है उनका प्रसाद भूमि पर पड़ रहा है, ऐसी अवस्था होती। गाय बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है, गर्दन ऊपर, पूंछ भी ऐसी ऊपर, कान भी ऐसे ऊपर, और जैसे कि चित्रपट बन जाते हैं सब गायें उस धुन के आवाज के प्रभाव से, जैसे चित्रपट जैसे स्तब्ध हो जाती हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। तो ये चढ़ गए ऊपर और उन्होंने वहां पर मुरली बजाई और उस धुन में हर गाय को अपना नाम सुनाई पड़ा। धुन तो एक ही बज रही है, अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो केवल धुन बजेगी, छठवीं धुन, लेकिन हर गाय को क्या पड़ रहा है नाम, तिलकिनी, धवली, हाँ कोई जो भी नाम दिया है, गंगा, यमुना, जो भी दाय, वो उसको सुनाई पड़ रहा है। और वो सुनकर वो भाग रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, और सब लोग एक कदम के पेट के नीचे इकट्ठा होते हैं ऐसे, गर्दन ऊपर करके, पूंछ ऊपर, कान ऊपर, गर्दन ऊपर, आंखें बड़ी बड़ी, नाचप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं भाव विभोर होकर। बछड़े भी ऐसे खड़े हैं, सारी गाय इकट्ठा हो जाती है, लेकिन कुछ गाय जानबूझकर भी, वो आवाज़ सुनकर भी ऐसे करते हैं कि जैसे हमने सुना ही नहीं कुछ। तो भगवान सारे गायों को वहीं खड़ा करते हैं, पेड़ से उतरते हैं, उन गायों के पास जाते हैं, उनको बड़े प्रेम थपथपा के बुला कर लेके आते हैं, उनको क्या कहते हैं, अटेंशन सीकिंग काउज, उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, वो जनरल कॉल पे नहीं आ सकते, इसलिए भगवान उनका भी इच्छा पूरी करके उनको भी बड़े प्रेम से थपथपा के लेके आते हैं। वो जब सारे इकट्ठा हो गए फिर वापस मुरली लेते हैं और सभी लोगों को लीड करके नंद भवन के पास पहुंचते हैं। वहां पर नंद बैठक है, एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है बहुत, वहां पर बाबा, मामा, मम्मी इंतजार कर रहे हैं। वो तुरंत भागते हैं उनकी गोद में, और एक गोद में नंद बाबा के बलराम जी बैठे हैं, एक गोद में कृष्ण बैठे हैं, उनके चरण ऐसे क्रॉस है, इनका राइट और उनका लेफ्ट ऐसे, हाँ इनका गोरा राइट और उनका लेफ्ट सांवला ऐसे क्रॉस में रखा है उनके सामने, और वो ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वो भी ग्वाल बाल बीच में बोल रहे हैं आज क्या हुआ, क्योंकि सबको एक्साइटमेंट है ना, आज हम लोग ने दूर जाकर क्या क्या लीला किया, सब लोग बैठ के सुना रहे हैं उनको, उनको आरती उतारनी है, मक्खन खिलाना है, वो उनको क्या करना है, वो कहाँ मौका मिल रहे हैं, यशोदा माई को बता रहे हैं, रोनी को बता रहे हैं, बाबा को बता रहे हैं, कई समय तक वो लीला चल रही है। उसके बाद थोड़ा सा उनका वेग कम हो जाता है, फिर वो कल निकलने, दोबारा जाना है इस वादा को लेकर, सब ग्वाल बाल चले जाते हैं और फिर कृष्ण भगवान अपने घर में लौट के जाते हैं। और सबसे पहले दिन गायों को लेकर कहाँ गए कृष्ण भगवान, फर्स्ट एक्सकर्शन किधर किया उन्होंने, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन में अपना पहला गौचारण किया, उसके बाद में फिर रोज अनंत जगह पर उनका लीला। गोपाष्टमी का दिन इतना महत्वपूर्ण है, ये नंदगांव में बहुत ही बड़ा उत्सव है। कोई भी नंदगांव वासी होगा, वो कहीं भी बाहर काम करता होगा, वो नंदगांव को गोपाष्टमी के दिन आएगा, वो रह नहीं सकता है। मेरे घर पे नंदगांव के विश्वासी एक बार ट्रीटमेंट के लिए आए थे और वो जा नहीं पाए बेचारे वो दिन, क्योंकि दादाजी का ऑपरेशन होने वाला था, विपड़े गोस्वामी नंदगांव के ठाकुर जी की सेवा करते, तो दिन भर वो इतने व्याकुल रहे, कॉन्स्टेंट उनका हर 15 मिनट में फोन करते, अभी गाय कहाँ पहुंची, अभी ठाकुर जी की छवि कहाँ पहुंची, क्योंकि अभी भी वो दो ग्वाल बालों को कृष्ण बलराम बनाते हैं, सज धज के उनको कंधे पे लेते हैं, वो सब जगह घुमाते हैं, टेर कदम पे गीत गाते हैं, घर पे गीत गाते हैं, उनको जगह जगह घर में जाकर लोग खाना खिलाते हैं। दिन भर चलता है उत्सव 15 घंटा, इतना आनंद होता है नंदगांव में। तो वो बार बार अभी कौन सा गीत गाया जा रहा है, अभी कहाँ पर पहुंचे ठाकुर जी, अभी भोग लगाया क्या, अभी किसके घर में भोजन ले रहे हैं, शाम तक बोलते रहे, लास्ट में सबकी मंडली टेर कदम पहुंच गई, फिर वहां पर कि उन्होंने कई देर तक फोन पे सुना सब कुछ, फिर अभी निकल गए, अभी तो नंद बैठक पे पहुंचे, अभी बाबा उनका स्वागत कर रहे हैं नंद बैठक पे, और सब लोग उनको लेके जा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सब खिला रहे हैं उनको कंधे पे बिठा कर, इतना आनंद है। नंदगांव का ये बहुत ही प्रिय और बहुत ही भव्य उत्सव है गोपाष्टमी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो गायों को और बछड़ों को, बाय द वे आपको पता भी होना चाहिए कि उसमें भैंसे भी थी, उसमें बकरियां भी थी, उसके अंदर सब कुछ, सब प्रकार के जानवर भगवान के थे, केवल गाय नहीं थी, गाय, बैल, छोटे बड़े हर प्रकार के प्राणी थे उसके अंदर। तो गायों को भी जो आनंद भगवान देते हैं, वो योगियों को, तपस्वियों को, ध्यानियों को और ज्ञानियों को भगवान नहीं देते हैं, नहीं मिल सकता है उनको, वो केवल प्रेम की पूंजी लुटाकर ही प्राप्त हो सकता है। बोलो प्रेम वत्सल भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री बलराम जी राव जी भैया की जय। जय श्री राधे श्याम। तो कोई किसी का प्रश्न है या समय है तो पूछे, नहीं तो फिर विश्राम करेंगे कथा का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो।